बता तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है, ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है।
ओम शांति। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको मन ही मन इंतजार था, वह घड़ी जो परम सत्ता परमात्मा को पहचानने की, जानने की, जिसे हमने आज तक ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह अलग अलग नामों से जाना, आज वो घड़ी आ गई है कि हम उसके बारे में सत्य पहचान सुनेंगे आदरणीय शीलू दीदी से। बहनों से अनुरोध है कि शीलू दीदी का स्वागत गुलदस्ते से करेंगी। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ शीलू दीदी। शीलू दीदी इज अ सीनियर फैकल्टी मेंबर इन एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड सिचुएटेड एट ग्रैंड सरोवर माउंट अबू। She is also coordinator of education wing of Raj Yoga Education and Research Foundation, Mount Abu. She is also in charge of Raj Yoga training intensives at Mount Abu. Sister Shilu came in contact with Brahma Kumaris in 1960 at a tender age of 12. After graduating from the Bombay University in 1969, she immediately dedicated her life for the godly purpose. She participated in founding several centers in Africa and Mauritius. Since 1976, she is based at headquarters of Prajapita Brahma Kumari Ishwarya Vishwavidyalaya at Mount Abu. She is a versatile speaker, trainer, and an expert interpreter. She was the very first one to represent Brahma Kumaris on the radio and television. She has also recorded several meditation commentaries. She is a popular orator with very good command on both English and Hindi. She has traveled extensively in 70 countries and in all the 5 continents as a lecturer in conferences and has been interviewed by newspapers and also given talks on radios and TV. So, put your hands together to welcome Shilu Didi.
Om Shanti. अभी आप सबने शिवानी बहन के द्वारा कैसे हमारे संबंध अच्छे बने उस पर बहुत सुंदर बातें सुनी, और मुझे विश्वास है कि इन बातों पर आप गौर करेंगे, ध्यान में लाएंगे, अपने जीवन में लाएंगे, तो अवश्य आपका यह जीवन बहुत ही सुखद बन जाएगा। अब जिस विषय पर मुझे कहा है, यह एक बहुत ही गूढ़ विषय है, आध्यात्मिक विषय है, लेकिन हमारे जीवन से संबंधित विषय है। अभी आपको बताया कि एक नया रिश्ता आप जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता वास्तव में बहुत पुराना है, पर शायद हम इस रिश्ते को भूल गए हैं, इसलिए फिर से हमें जोड़ना होगा। और वह रिश्ता है परमात्मा के साथ। आज अभी अभी आप सबने गीत सुना, आजकल ये गीत बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू रहता कहाँ और तेरा क्या काम है। हम उस ईश्वर से पूछते हैं कि आप कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं, आदि आदि न जाने कितने प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उनके प्रति। और अगर हम कहें ये रिश्ता नया आप जोड़ने जा रहे हो तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर जन्म में आपने उनके साथ रिश्तों की बात कही है। जब जब हम प्रार्थना करते हैं तब तब हम उस प्रार्थना में परमात्मा के साथ रिश्तों की बातें करते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। न जाने कितने सारे गीत परमात्मा के साथ रिश्तों पर बने हैं, लेकिन क्या सचमुच हम उसे जानते हैं? अगर जानते होते तो इस प्रकार के गीत जो अभी आपने सुना वो नहीं बनते। मुझे तो आश्चर्य हुआ, एक व्यक्ति से मैंने पूछा, परमात्मा से आपका क्या संबंध है? तो पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा, ये कोई प्रश्न होता है, परमात्मा से आपका क्या संबंध है, क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। मैंने कहा कुछ भी नहीं, आप उनको याद करते हो, क्योंकि जब जब दुख की घड़ी आती है तब ईश्वर के सिवा और कौन याद आता है। सुख में तो उसे हम भूल जाते हैं, लेकिन दुख में तो वो बहुत याद आता है। तो जब मैंने उनसे पूछा तो कहा कि कभी इसके विषय में मैंने सोचा भी नहीं था। तो देखिए, जिसके साथ हमारे सर्व रिश्ते हैं, सब संबंध हैं, और आज हम उसको बिल्कुल नहीं जानते। तो कौन है वो, कहाँ है, क्या करता है, क्या नहीं करता, कब आता है, कहाँ से आता है, आज उस मिस्ट्री को हम सॉल्व करेंगे, उस परम सत्ता को पहचानेंगे कि ईश्वर कौन है। आप सब जानना चाहेंगे? हाँ, जानना चाहेंगे, जरूर जानना चाहेंगे। खास करके जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, आपका यह प्रोफेशन है, आपको तो बहुत याद आना चाहिए, क्योंकि जब किसी की भी आप सर्जरी करते हैं या कोई ऐसा रोग है किसको, तो उसके रिश्तेदार आपसे कहते हैं, पूछते हैं, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना, तो आप उनको क्या कहते हो? आप भगवान को याद करो, ईश्वर को याद करो। आई कैन ओनली ट्रीट, आई ट्रीट एंड गॉड क्योर्स। डू यू से दिस टू योर पेशेंट्स और टू द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट्स? दोज हु से दिस रेज योर हैंड। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट बी सेइंग इट। तो आई ट्रीट एंड गॉड क्योर्स, आप ईश्वर को याद करो, क्योंकि रिश्तेदार और क्या कर सकते हैं? अगर वो रोते रहेंगे या दुखी होते रहेंगे तो उससे तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, जो एनर्जी जिसकी बातें आप सुन रहे हैं सुबह से, वो तो नहीं पहुंचेगी उसे। आपके मन में दुख होगा तो उसको तो वो दुख पहले पहुंचेगा उस पेशेंट को। तो इसलिए आप ईश्वर को याद करो, क्योंकि उससे आपको शक्ति मिलेगी और वो शक्ति आप ट्रांसफर कर सकेंगे उस पेशेंट को। इसलिए आप कहते हो कि आप उनको याद करो। तो देखिए, जाने अनजाने में हम उसे याद करते हैं जरूर। कई बार आपस में जब चर्चा होती है और हमें कोई बात समझ में नहीं आती है, अब क्या उत्तर है, क्यों हुआ, हुआ कैसे, हुआ हुआ नहीं हुआ, कई बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग बात है वो, तो हमारे मुख से अनायास निकल आता है भगवान जाने सच क्या झूठ क्या। भगवान जाने, गॉड नोज, ईश्वर जाने, अल्लाह जाने, तो भगवान जाने, तो अनजाने में ये निकल आता है। इसका मतलब कुछ तो रिश्ता है उनसे, पर वो रिश्ता कहीं टूट गया है। जैसे यहाँ बिजली जल रही है क्योंकि पावर हाउस से कनेक्शन है, लेकिन अचानक अंधेरा हो जाए तो क्या कहेंगे, कनेक्शन टूट गया, बिजली चली गई, शक्ति खत्म हो गई। तो आज भी अगर हम अपने जीवन में जो सुख शांति प्रेम खुशी आनंद शक्ति चाहते हैं वो नहीं है अगर, तो जरूर उस परम स्रोत से, ऑलमाइटी से, सुप्रीम पावर से वो कनेक्शन कहीं टूट गया है। तो राजयोग मेडिटेशन क्या है, योग अर्थात संबंध, जोड़, कनेक्शन, मीटिंग, कम्युनिकेशन, लिंक, जॉइंट। तो जैसे बिजली घर से फिर से कनेक्ट करने से वापस लाइट आती है, इसी प्रकार परमात्मा जो सुप्रीम पावर है उससे कनेक्शन जोड़ने से आत्मा में वापस वो शक्ति आती है। तो हम देखेंगे कि वास्तव में क्यों हम ये शिकायत करते हैं कि मन ईश्वर में लगता नहीं। ऐसे नहीं कि याद नहीं करते, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप तप हवन तीर्थ यात्राएं, न जाने क्या क्या हम तरीके अपनाते हैं ताकि मन के ईश्वर में लगे, प्रोफेशन में लगे वो तो लगता ही है, लेकिन ईश्वर में भी कहीं मन लगे, क्योंकि शक्ति उनसे ही मिलेगी। तो इतनी सारी हमारी जो कुछ भी हमारा प्रयास चलता है उसमें हम ये शिकायत ही करते हैं कि मन तो लगता नहीं, मन तो लगता नहीं। तो क्यों नहीं लगता, जबकि हमने सब रिश्तों का भी वर्णन किया उनके साथ। आज किसी भी व्यक्ति जिसके साथ कोई गहरा संबंध है उनके लिए तो कभी नहीं ये शिकायत होगी कि मन नहीं लगता उनमें, लेकिन परमात्मा के लिए शिकायत क्यों है कि मन नहीं लगता। और फिर हम मन को ही कोसते हैं, ये मन तो पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े की तरह है, एक बंदर की तरह है, न जाने क्या क्या उसके लिए हम शब्द जोड़ते हैं। अब मन तो हमारा बहुत बड़ा मित्र है वास्तव में देखा जाए, लेकिन इस मित्र को हम पहचाने और फिर उसको ईश्वर में लगाएं। गीता के अंदर अर्जुन की भी यही शिकायत थी, हे भगवान ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको वश करना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने दो शब्द दिए, दो स्टेप्स बताए जिसके आधार से मन ईश्वर में लग सकता है, और वो दो शब्द क्या दिए, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास, इससे मन को वश में किया जा सकता है। अब जब ये दो शब्द लोग सुनते हैं तो पहले तो वैराग्य शब्द से डर जाते हैं, इसका मतलब क्या हमको सन्यासी बनना पड़ेगा, सन्यासी नहीं। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन जाओ, नहीं। लेकिन मन को उस परमात्मा में लगाने के लिए मन को और सब तरफ से हटाना होगा, तब एक में जुड़ेगा। अगर मन अनेकों से जुड़ा हुआ है तो एक से कैसे जुड़ सकता है, और वाइस वर्सा भी है, एक से जुड़े तो अपने आप सबसे हटे, पर हटने का अर्थ ये नहीं है कि छोड़ देना। पर जिस प्रकार एक कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रह सकता है, तो हम भी इस संसार में रहकर भी क्यों नहीं न्यारे और प्यारे रह सकते हैं? रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? अवश्य रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या पुरुषार्थ हो हमारा, वो अवश्य हमें योग साधना बताती है। तो क्यों नहीं मन ईश्वर में लगता है? सबसे पहला कारण है ये देह का अभिमान या स्वयं का ज्ञान। और आज सुबह के सत्र में आपको स्वयं की पहचान दी गई, आप कौन हैं? आपका जो प्रोफेशन है वो आपका कार्य है, वो आप नहीं है। What you do is not what you are. You do many things. But what are you? एक बहुत बड़ा प्रश्न जो आज बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने भी कहा, पूछा, know thyself. वो मैं कौन हूँ? तो स्वयं का ज्ञान ये एक रुकावट बनता है परमात्मा और आपके बीच में। जिस प्रकार हमें अगर कनेक्शन जोड़ना है तो वायर, जो रबर इंसुलेशन है, उसको तोड़ना पड़ेगा, कॉपर टू कॉपर ज्वाइन करना पड़ेगा, तब करंट पास होगा। इसी प्रकार ये मैं कहने वाला ये देह नहीं हूं, लेकिन एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, एक अजर अमर अविनाशी सत्ता हूं, जिसका सब संबंध उस परमात्मा के साथ है, वो हम आज भूल चुके हैं। तो अगर वो संबंध जोड़ना चाहते हैं तो पहले खुद को पहचानना होगा। इसीलिए कहा जाता है, इफ यू वॉन्ट टू नो गॉड यू हैव टू नो योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ रियलाइजेशन will lead to God realization. Without self realization, you cannot even realize God. इसीलिए पहला कदम था knowing the self. फिर दूसरा कदम है knowing that supreme being. वो भी कौन है? आज अगर हम कोई भी रिश्ता बनाना चाहते हैं, अपनी बेटी का विवाह इससे करना चाहते हैं, तो बेटी को तो हम जानते हैं, लेकिन जिससे विवाह करना है उनका, उसको भी तो पहचानना होगा, उसको भी तो जानना होगा, उनके बारे में भी सब जानकारी एकत्रित करनी होगी, ऐसे तो नहीं रिश्ता जोड़ देंगे। इसीलिए परमात्मा के बारे में भी जो आज इग्नोरेंस है उसको भी दूर करना होगा, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। ईश्वर कौन है ये पता ही नहीं, और अगर वो पता हो जाए तो मन को परमात्मा में लगाना क्या बड़ी बात है। लेकिन एक तीसरा भी विघ्न है, अगर मान लो पता हो भी जाए, पर एक तीसरा विघ्न आता है कि यह मन जो आज चंचल घोड़ा बन गया है, आज उसमें इतनी मैल भरी हुई है विकारों की, विकृतियों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, बेईमानी, चुगली, न जाने क्या क्या। अब उस मैले मन में परमात्मा स्थान कैसे लेगा? जैसे दूध एक शुद्ध चीज है, उसे रखने के लिए बर्तन भी कितना शुद्ध चाहिए। खट्टाई वाले मैले बर्तन में आप दूध कभी नहीं रख सकेंगे, अगर रख भी दिया तो वो पीने योग्य नहीं होगा। इसलिए मन को भी स्वच्छ बनाना होगा, तभी तो परमात्मा की याद उसमें ठहरेगी। इसलिए ये तीन कारण हैं, और उसका निवारण राजयोग मेडिटेशन देता है, जो आज हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, उसमें परमात्मा की पहचान देना चाहेंगे। तो आत्मा के विषय में जानना ये तो आपने समझ लिया। अगर आपसे अभी कोई पूछे आप कौन हैं, तो आप अवश्य कहेंगे, हाँ क्या कहेंगे, कौन है आप? आत्मा है। अब आत्मा को पहचानना अर्थात उसके स्वरूप को पहचानना, आत्मा क्या है? भाई किसी का नाम आपने लिया, भाई वो कैसा, उसका फोटो चाहिए। अब आत्मा को तो हम देख नहीं सकते, कई कहते हैं आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती है, कई बार अचानक जैसे किसकी डेथ हुई पर आत्मा निकल गई, तो दिखाई क्यों नहीं देती आत्मा? वास्तव में ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि ये आंखें हैं चर्म चक्षु, दे आर मेड ऑफ मैटर, और तो ये जो फिजिकल आंखें हैं वो फिजिकल चीजें ही देखेगी, पर आत्मा इज अबव फिजिकल, इट इज मेटाफिजिक्स, इज नॉट फिजिकल। तो जो चीज है ही फिजिकल नहीं, उनको ये फिजिकल आंखें कैसे देख सकती? इट्स एन एनर्जी, पर उस एनर्जी का भी तो स्वरूप है ना, क्यों नहीं है? पर वो स्वरूप इन आंखों से हम नहीं देख सकते। तो आत्मा क्या है? एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा है, और उस आत्मा में सात मुख्य गुण, जो हमारे हम आत्माओं के अनादि अविनाशी गुण हैं, वो पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। ये आत्मा की नेचर है। हर आत्मा अपने असली स्वभाव में पवित्र है, प्यूरिटी। जैसे ये सफेद वस्त्र हैं, कितने सफेद हैं, जरा सा दाग लगता है कितना बुरा लगता है। तो आत्मा जो इतनी प्योर है, उसमें मन अगर थोड़ा भी बुरा सोचता है, तुरंत हम कहते हैं मेरा मन खाता है, आई नो इट्स नॉट राइट। अंतरात्मा की आवाज तो कुछ और ही कहती है, मन को जवाब देना है, शिवानी जी ने कहा जवाब देना है, तो कौन जवाब देगा? मन के ऊपर बुद्धि है, इसलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो, ये भी आत्मा की शक्ति है। तो हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अंदर से आता है, इन्फॉर्मेशन सूचना जानकारी ये सब बाहर से आती है, जैसे भोजन हम बाहर से खाते हैं, पर वो शक्ति तो अंदर की चीज है। इसलिए आत्मा ही ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये आत्मा के सात मूल गुण जो आत्मा के इननेट वैल्यूज है, वो अंदर से आते, वो बाहर से नहीं आते हैं, इन्फॉर्मेशन बाहर से आएगी। इसलिए वैल्यूज के बारे में कहा जाता है, वैल्यूज कैन नेवर बी टॉट बट दे आर कॉट। बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, कहने से नहीं सीखते, लेकिन देखने से सीखते हैं, दे आर कॉट। वॉट एवर पेरेंट्स डू चिल्ड्रन विल फॉलो। इसलिए जब हम ये महसूस करते हैं कि मैं आत्मा इन्हीं गुणों की स्वरूप हूं, तो इन्हीं अनुसार मुझे व्यवहार करना है, इसलिए क्योंकि ये मेरे पास ही है, ये मुझे बाहर से नहीं लेने, और ये चाहते हैं हम। इस शरीर में आत्मा टेम्पररी निवास करती है, इस भ्रकुटी में, और परमानेंट निवास ये दुनिया नहीं है। हम कहते हैं ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, हम दो दिन के मेहमान हैं, ईश्वर के घर से आए हैं, ईश्वर के घर जाना है। तो आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ अनादि अविनाशी है, तो जहां से आए हैं वहीं जाना है। शरीर जहां से आया है वहीं जाएगा, शरीर पांच तत्वों से आया है, पांच तत्वों के पास वापस देना होगा, और आत्मा के लिए कहेंगे भगवान के घर से आइए, भगवान के पास जाना है। अब ये जब हमने समझ लिया, तो फिर वो भगवान कौन है, हु इज ही, वेयर इज ही, हाउ इज ही, वेयर डज ही, व्हेन डज ही कम, व्हाट डज ही डू, हाउ कैन वी मीट हिम, है ना? ये सबके मन में प्रश्न है या नहीं है? सबके मन में है कि नहीं है? हाँ, तो अवश्य आप इसका जवाब चाहेंगे। अब आप कहेंगे आपके पास कहाँ से जवाब है, आपको किसने ये बताया, तो वो भी आपको बताया जाएगा कि ये किसने बताया, लेकिन क्या बताया है परमात्मा ने अपना परिचय, वो हम आपको अभी बताना चाहेंगे। क्योंकि एक तरफ हम ये तो कहते हैं गॉड इज वन, ईश्वर एक है, ईश्वर सत्य है, तो सत्य माना एक ही, सत्य दो नहीं होता है, झूठ तो अनेक होते हैं। जो बात जैसी है सच्ची बात है वो तो एक ही होगी, लेकिन अगर उस कोई व्यक्ति सच को छिपाना चाहता है तो एक झूठ बोल देगा, किसने चोरी की, पकड़ा गया और उससे पूछा गया आपने चोरी की, तो कहेगा नहीं की, मान लो अब नहीं की, एक झूठ बोला, सच को छिपाया। अब उस झूठ को साबित करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, वो एक ही तो झूठ नहीं है ना, क्योंकि उसी को सच बनाना है, तो कितने झूठ बोलने पड़ेंगे एक सच को छिपाने के लिए। और अगर एक सच है नहीं की, तो नहीं की चोरी, नहीं माना नहीं। तो इसीलिए परमात्मा सत्य है और वो एक है, लेकिन आज एक परमात्मा के बारे में इतनी मान्यताएं हैं जो साधारण इंसान तो मूझ गया है कि आखिर ईश्वर है कौन। और हम देखते हैं कि तीन प्रकार की कैटेगरीज बन गई है ईश्वर के बारे में सोचने वालों की। एक कैटेगरी उनकी है जो बिल्कुल अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, इतने अंधविश्वास में है जिसने जो कहा ईश्वर के बारे में, कोई भी बात कही सत्वचन मारा विदाउट थिंकिंग, कोई उनमें विवेक का प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ, आस्था या विश्वास, फेथ, श्रद्धा, ये बहुत ऊंची चीज है, ये बड़े ऊंचे शब्द है, लेकिन अगर अंध शब्द जुड़ गया, अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा, वो हमें ईश्वर के नजदीक नहीं ले जाएगी। अंधा व्यक्ति कहां पहुंचेगा, रास्ता कहां मिलेगा उसे। तो एक और है बिल्कुल अंधविश्वास, दुनिया में वो भी देखते हैं, बिल्कुल भावना बहुत ऊंची चीज है, पर वो भावना अंधविश्वास की तरफ न ले जाए। भगवान तो भावना का भूखा है कहा गया है, प्रेम का प्यासा है और भावना का भूखा है, ये मान्यता है ईश्वर के लिए। तो भावना, प्रेम ईश्वर से बहुत ऊंची चीज है, पर अंध शब्द आ गया तो वो हमें ईश्वर के नजदीक नहीं ले जाएगा। तो कई फिर समझते हैं तो उसका दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल नास्तिक। इतने नास्तिक जो ईश्वर के बारे में इतना तर्क करते हैं, अगर है तो दिखाओ, ये तो हम दिखाएं का मतलब क्या है, कोई प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में ए और प्लस बी इक्वल टू सी, ये बता करके हम ईश्वर दिखाएंगे क्या, कौन सी दो चीजें जोड़ करके हम ईश्वर दिखाएंगे कि लो ए और बी ये है और अब ये सी ईश्वर है। तो क्या पहले नहीं है कि दो चीजों को जोड़ा और फिर वो दिखाया। तो ये प्रयोगशाला में प्रयोग करके दिखाने की भी कोई बात नहीं है। तो तर्क भी ईश्वर तक हमें नहीं ले जाएगा, तर्क हमें वो भी ईश्वर से दूर करेगा। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है लोगों की जो न तर्क करते हैं न अंधविश्वास में है, बट दे थिंक दैट दे आर न्यूट्रल, और वो क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है ईश्वर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है ना। किसी व्यक्ति के बारे में कोई कहे फलाना व्यक्ति ऐसा, भाई मेरा क्या जाता, मेरा कोई लेना देना नहीं है उनके साथ, जिसके साथ लेना देना हो उनके बारे में कुछ सोचे, तो क्या सचमुच ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, क्या समझते हैं आप, कोई लेना देना नहीं है, जो समझते मेरा कोई लेना देना नहीं है, हाथ उठाए, कोई नहीं होना चाहिए, अगर है तो शायद वो उसने समझा नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है, बहुत कुछ लेना देना है, फिर उसमें ऐड करते कि अच्छा लेना देना है, चलो मान लिया ठीक है ईश्वर है ना, लेकिन बस और ज्यादा उसके विषय में सोचने की जरूरत ही क्या है। बस अगर ईश्वर है तो भी यही कहेगा ना, अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो, हा? यही कहेगा वो, तो मैं कर ही रहा हूँ, आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है जीवन में, सब पता है। लेकिन पता है यही सब कुछ नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे हम कार्य कर लेते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और फिर जो अंदर में पश्चाताप होता है वो तो सारी शक्ति को नष्ट कर देता है, क्योंकि उस समय वो शक्ति नहीं आई, वो समझ नहीं आई, हम प्रलोभन में फंस गए, फंस गए, पता ही नहीं चला, और फिर पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर परमात्मा से सतत संबंध है तो वो शक्ति सदा मिलती रहेगी, जिससे हमारा हर कर्म श्रेष्ठ बनेगा, सुखदायी बनेगा, सफल बनेगा। लेकिन उसके लिए हर समय उनके साथ संबंध चाहिए, इसलिए उसको पहचानना भी बहुत जरूरी है, जिसको हमने हर जन्म में याद किया लेकिन जानते नहीं। अब आज इतनी सारी कंसेप्ट जो आज ईश्वर के बारे में है, थोड़ा देखेंगे इन पर, थोड़ा गौर करेंगे। कई कहते हैं ठीक है, सोल एंड गॉड इज द सेम, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, हम आत्मा ये सब, आत्मा ये सब भगवान ही भगवान है, सब आत्मा है, सब परमात्मा है। अब थोड़ा सा सोचने की बात है, आत्मा ही परमात्मा है, फिर परमात्मा शब्द अलग क्यों कहा गया है? आत्मा ही तो अनेक है, धर्मात्मा, महात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, कितने प्रकार के ये आत्माएं कहेंगे, लेकिन परमात्मा एक ही है, इसलिए सुप्रीम बीइंग एक ही है। आत्मा ही अनेक है, जिनको जीओडी, स्मॉल जीओडी से जोड़ सकते, एस लगा सकते, गॉड्स एंड गॉडेसेस। भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं, उनको गॉड्स एंड गॉडेसेस मानते हैं, लेकिन कैपिटल जीओडी तो एक ही है। अनेक प्रकार के कोर्ट्स है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही है। इसीलिए वो सुप्रीम पावर, परम शक्ति, वो कौन है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। फिर कई कहते हैं ठीक है, आत्मा उस परमात्मा का अंश है, टुकड़ा है। अब यहां हम कहते हैं अंश का अर्थ समझना है, अंश का मतलब टुकड़ा, उसका भाग, ये क्या कहां तक सही होगा? क्योंकि आत्मा अगर उस टुकड़ा बनकर के उस परमात्मा से निकली, तो फिर क्या इसका मतलब पहले नहीं थी और वो टुकड़ा निकला? अब आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा जल नहीं सकती, कट नहीं सकती, डूब नहीं सकती, सूख नहीं सकती। आज किसी को जिंदा कोई जला दे, शरीर जल जाएगा, आत्मा तो उड़ जाएगी, वो तो जलेगी नहीं। इसलिए आत्मा तो अनादि अविनाशी है, उसका टुकड़ा तो नहीं है ना, थी है और सदा रहेगी, यह शरीर रहे या न रहे, पर वो रहेगी सदा और थी भी सदा। इसीलिए अंश कहने का अर्थ समझना होगा, अंश का मतलब नॉट इन क्वांटिटी, कि वो क्वांटिटी में से अंश निकलते गए निकलते गए निकलते गए, बट अंश इन क्वालिटी, यानी परमात्मा के जितने भी गुण हैं आत्मा के वही गुण हैं, इसलिए क्वालिटी इज द सेम बट क्वांटिटी मे बी डिफरेंट, इसलिए अंश कह दिया, क्वालिटी इज द सेम, इसलिए अंश। अब इसी प्रकार कई कहते हैं कि अच्छा, फिर और प्रश्न करते हैं, फिर उनसे हम पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है? अब कौन है ये तो समझा ही नहीं, कहाँ है? तो कहेंगे सब जगह है, सब जगह है। अब सब जगह है का मतलब क्या है? अगर वो सब जगह है फिजिकली, तो उसके कितने गुण हैं, कितनी उनकी महिमा है, वो भी सब जगह होनी चाहिए। आज कहीं आग जल रही है तो उसका सेक, उसकी गर्मी चारों ओर फैलेगी। तो परमात्मा इतने गुणों का भंडार, सागर, दाता, लेकिन वो गुण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सब जगह है का मतलब क्या है? अब ये भी एक भावनात्मक विषय है। अगर हम उसको केवल सिद्धांत के रूप में ले लेंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसीलिए कई मूंझ गए हैं, ईश्वर के स्वरूप को भी नहीं जानते तो उसके स्थान को, ठिकाने को भी नहीं जानते। फिर कोई कह देंगे कि नहीं, वो तो सबके हृदय में बसता है। अब सबके हृदय में बसता है वो तो बहुत ऊंची बात है। जिससे प्यार होता है उसको तो दिल में ही जगह दी जाती है। एक माँ अपने बच्चे को अपनी आंखों में जगह देती है, कहती है मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। तो कोई आंखों में स्थान दे, कोई दिल में स्थान दे, कोई रोम रोम में स्थान दे, ये बहुत भावनात्मक ऊंची बातें हैं। लेकिन सिद्धांत क्या है? क्योंकि हम कहते हैं ईश्वर के घर से आए, उनके पास जाना है तो जरूर उनका कोई और घर होगा। ये संसार तो मुसाफिर खाना है, रैन बसेरा है, दो दिन के मेहमान है। आत्मा एक पंछी है, परदेसी है, न जाने कितनी सारी बातें हम करते हैं। तो परमात्मा तो बड़ा परदेसी होगा वो तो। तो इसीलिए वो कहाँ है? यहाँ तक भी कुछ धर्म वाले कहते हैं इज इन सेवेंथ हेवन, वो सातवें आसमान में रहता है। अब वो सातवां आसमान कहाँ है? क्या हम वहाँ जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? ये भी एक प्रश्न है। फिर कई जो नेचर को मानते हैं, प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, वो कहते हैं बस नेचर इज गॉड। ये सब पेड़ पौधे, नदियां, सागर, पहाड़, ये फल फूल, यही सब ईश्वर है, ये ईश्वर है। अब क्या यही प्रकृति ईश्वर है? तो आज प्रकृति में इतने प्रकोप आते हैं, कितना दुख होता है। एक बाढ़ आई, भूकंप आया, अकाल पड़ा, कितना दुख मिलता है उससे। तो क्या परमात्मा इतना दुख देता अगर नेचर ही भगवान है तो? और आगे कई कहेंगे वो तो नाम रूप से न्यारा, इज नेमलेस, फॉर्मलेस, टेस्टलेस, और लेस 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 लेस, सब निकालते जाओ निकालते जाओ, जो बाकी बचे ना वो ईश्वर। दिस इज व्हाट सम पीपल से। अब थोड़ा ये भी सोचने की बात है, बाकी क्या बचा? सब नेम फॉर्म कुछ भी नहीं है तो देन व्हाट रिमेन्स। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है कि जो फिजिकल बातें हैं, नेम फॉर्म टेस्ट, ये जो भी फिजिकल अनुभव है, वो परमात्मा का अनुभव नहीं है। ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। इसलिए परमात्मा जो फिजिकल भौतिक नाम रूप गुण धाम इन सब से न्यारा है, ये समझना होगा। फिर कई कहते हैं कि सारे ईश्वर के रूप है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन। कहां नाम रूप ही नहीं और कहां कह दिया सारे उनके ही नाम रूप है। सब कुछ वो ही कर रहा है, पत्ते पत्ते को वो ही हिला रहा है। तो जैसे चोरी भी वही कर रहा है, पुलिस बन करके पकड़ भी वही रहा है, फिर उसका केस भी वही करवा रहा है, जज भी वही बनता, वकील भी वही बनता, तो क्या ऑल वन मैन शो है क्या? वो एक वन मैन शो ना, एक ही व्यक्ति सबका रोल बजा रहा है। फिर सबका रोल वही बजा रहा है तो कर्म भी वही कर रहा है, फल भी वही दे पाए ना, हम क्यों फिर पाए? फिर ये क्यों कहा गया जो करेगा सो भरेगा? अब ये सारी बातें हैं। और कई तो इन सब बातों को सुनकर के इतना मूंझ जाते, कहते है ही नहीं, छोड़ो, यू डोंट वांट टू नो एनीथिंग अबाउट गॉड, इतना कंफ्यूजन है, बस अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो बस। लेकिन ये इसमें भी हमको ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि परमात्मा मेरे सच्चे पिता हैं, और अगर पिता के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, जो सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों का सागर है, ऑल माइटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, उनके साथ ही रिश्ता नहीं है तो हम कहां के रहेंगे? और अगर रिश्ता जोड़ा तो कितने ऊंचे हम बन सकते हैं। तो अगर नहीं जोड़ा तो नुकसान उनको नहीं है, हमको है। अगर किसी का पिता बहुत धनवान है और बेटे को धन की आवश्यकता है पर पिता से रिश्ता ही तोड़ा हुआ है तो किस मुंह से पिता से मांगेगा भी, रिश्ता ही तोड़ा हुआ है। और अगर रिश्ता पक्का है पिता से तो मांगने की भी जरूरत नहीं है, पिता अपने आप ही देगा, अपने आप ही देगा, ये जरूर समझना है। इसलिए परमात्मा को पहचानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात हम थोड़ा सा कुछ एक साइंटिफिक वे से उस रूप से लेंगे जैसे हम सब वैज्ञानिक विज्ञान के फील्ड से हैं। हम लोग कॉलेज में प्रैक्टिकल्स करते थे तो प्रैक्टिकल्स में हम लोग क्या करते, वी आर गिवन समथिंग और उसमें कहा जाता है कि आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज निकाले और जो हम जानते हैं उसके आधार से ये क्या चीज है वो बताना है, फ्रॉम नोन टू अननोन व्हाट वी ऑलरेडी नो एंड फ्रॉम दैट वी विल डिसाइड व्हाट अबाउट दैट विच आई डोंट नो। ओके, तो इसी प्रकार परमात्मा के विषय में ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जो सर्व मान्य है, जो सभी धर्मों को स्वीकार्य है, क्योंकि कोई भी धर्म गलत नहीं है। हरेक ने ईश्वर के बारे में जो कुछ कहा है वो सत्य ही है, लेकिन आज लोगों ने उसको किस रूप में इंटरप्रेट किया है वो उनकी बात है। तो ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को स्वीकार्य हो, सो इसलिए एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन्स, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म का हो, वो उस स्वरूप को स्वीकार कर सके। अवश्य कोई भी दैहिक स्वरूप फिजिकल फॉर्म सभी धर्मों को स्वीकार्य नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो वी हैव टू स्ट्राइक दैट आउट। फिर दूसरी बात, परमात्मा हम उसको ही कहेंगे जो ऊंचे से ऊंची शक्ति है। इसीलिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान इज द हाईएस्ट इन ऑल रिलेशनशिप्स, जिनके ऊपर कोई अन्य हस्ती नहीं है। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं जितनी भी हस्तियां हैं, जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई है जरूर, और हर एक कहेगा मेरे माता पिता मेरे से ऊंचे हैं, मेरा टीचर मेरे से ऊंचा है, मेरा गुरु मेरे से ऊंचा है, जिसने मेरे जीवन की रक्षा की वो मेरे से ऊंचा है। और उनके लिए कहा जाता है कि इनका ऋण कभी हम चुकता नहीं कर सकते। एक डॉक्टर का भी इज्जा हमारे से ऊंचा है मानेंगे, किसने किसी डॉक्टर ने मेरी सर्जरी करके मेरी जान बचाई हो तो अवश्य मैं उसको उसकी मैं ऋणी हो गई, सारा जीवन मैं उसकी ऋणी हूं, और यही कहूंगी इसने तो मुझे नया जन्म दिया। तो जिसने मेरी जान बचाई उसका भी ऋण चुक तो नहीं हो सकता है सारी उम्र भर, लेकिन वो ऊंचे से ऊंचे फिर भी नहीं है। मेरे माता पिता मेरे लिए ऊंचे होंगे, लेकिन मेरे माता पिता के भी माता पिता वो उनके लिए ऊंचे हैं। तो वो कौन माता पिता जिसके कोई माता पिता नहीं, वो सबसे ऊंचे होंगे। मेरे शिक्षक मेरे से ऊंचे हैं, लेकिन मेरे शिक्षक का भी तो कोई शिक्षक होगा, तो वो कौन सा शिक्षक, परम शिक्षक जिसका कोई शिक्षक नहीं। मैं किसी की शिष्या हूं, वो गुरु मेरे से ऊंचा है, पर उस गुरु का भी कोई गुरु होगा, उसका भी कोई गुरु होगा, पर वो सतगुरु जिसका कोई गुरु नहीं, और वो परम रक्षक जिसका कोई अन्य रक्षक की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जीवन में ये चार संबंध है जिनके सदा हम ऋणी हैं, वी आर ऑलवेज इंडेटेड टू देम, माता पिता, शिक्षक, गुरु और रक्षक। अब इन चारों संबंधों को अगर हम ईश्वर से जोड़ते हैं, वो सबसे ऊंचा संबंध, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। इसलिए परमात्मा को का कोई माता पिता शिक्षक गुरु रक्षक नहीं, इसलिए कहा ऊंचे से ऊंचा भगवान। फिर केवल ऊंचे से ऊंचा ही नहीं, सबसे न्यारा भी, सबसे न्यारा भी, नॉट ओनली हाईएस्ट ऑन हाई बट ऑल्सो यूनिक एंड एब्सोल्यूट, नो वन इक्वल ऑल्सो। इसलिए परमात्मा को एब्सोल्यूट कहते हैं। इस संसार में हर एक चीज रिलेटिव है। ये हॉल छोटा है क्योंकि इसके सामने डायमंड हॉल है, वो बहुत बड़ा है तो उसके हिसाब से छोटा है, लेकिन इनसे भी छोटे हॉल है तो उनके हिसाब से ये बड़ा है। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव, एवरीथिंग इज कंपेरेटिव, बट फॉर गॉड इट विल बी सर एब्सोल्यूट बिकॉज नो कंपेरिजन। सो नॉट ओनली हाईएस्ट ऑन हाई बट ऑल्सो नो वन इक्वल। अब उस वो किस, वो कौन होगा? फिर परमात्मा के लिए कहते वो तो दाता है, देने वाला, जब भी देता छप्पर फाड़ के देता है। इंसान दाता नहीं बन सकता है। ये शरीर कितना लेता है, कितना लेता है, इनपुट कितना देना पड़ता है शरीर को, आउटपुट कितना है शरीर से, कंपैरेटिवली तो बहुत कम है। परंतु परमात्मा तो दाता है, देना देंदा दे, लेंदा थक जाए, लेने वाला थक जाएगा, वो दाता देता ही रहता है। वो दाता कौन है जो कभी लेता नहीं? अगर उसके नाम पर कुछ करते भी हैं, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, हाँ ऐसे कहते हैं ना, वो दाता है। तो वो कौन? फिर परमात्मा उसको ही कहेंगे ओमनी पोटेंट, वो सर्वशक्तिमान है, वो ज्ञान का सागर है। ओमनी पोटेंट, ओमनीशियंट, ज्ञान का सागर और सर्वशक्तिमान, जानी जानन हार, परमात्मा से कोई बात छिपी नहीं रह सकती, वो सब कुछ जानता है। ऐसा कौन इंसान ये दावा कर सकता है मैं सब कुछ जानता हूं? कोई इंसान की शक्ति नहीं, और कोई इंसान नहीं कह सकता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, लिमिट्स है। तीनों कालों को जानना ये केवल परमात्मा का ही कार्य है। इंसान तो इतना अल्पज्ञ कि वर्तमान में भी अनभिज्ञ हो जाता है, वी कैन बी इग्नोरेंट इवन इन द प्रेजेंट, लीव असाइड पास्ट एंड फ्यूचर। तो परमात्मा हम किसे कहेंगे? अब हम देखेंगे सर्व धर्मों को स्वीकार्य। किसी भी धर्म पिता ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा। जीसस क्राइस्ट ने सूली पर, क्रॉस पर चढ़ते समय फादर को याद किया, फादर फॉरगिव देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट नो व्हाट दे आर अप टू, फॉरगिव देम। तो किस फादर को क्राइस्ट ने याद किया? उसने यही कहा गॉड इज लाइट, लीड मी थाई काइंडली लाइट। वो लाइट कौन है? मोहम्मद ने कभी नहीं कहा मैं अल्लाह हूं, उसने कहा मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, पैगंबर मोहम्मद कहा जाता है। तो किसका पैगाम लाया वो? कौन है वो अल्लाह जिसका पैगाम लाया और उसके लिए कहा नूरे इलाही? वो नूर कौन? मक्का में एक काला पत्थर है जिसको संगे अस्वद, काबा का पत्थर कहते हैं, बहुत उसको रिस्पेक्ट देते हैं जो हज करने जाते हैं मक्का। तो वो पत्थर किसकी यादगार है, किसकी निशानी है? उसी परमात्मा की यादगार निशानी। गुरु नानक ने कभी नहीं कहा मैं ईश्वर हूं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत। ग्रंथ पढ़ते हैं लोग, लेकिन ये किसकी महिमा है कहां जानते हैं जो गुरु नानक ने उस एक का परिचय दिया। इसी प्रकार ज़ोरास्टर जो पारसियों का गुरु था, फायर टेंपल मानते, आउरा मजदा कहते हैं, ये आउरा मजदा फायर ये सब किसकी निशानी है? उसी परमात्मा की निशानी। इसी प्रकार महावीर और बुद्ध, हालांकि जैनिज्म और बुद्धिज्म में एक ईश्वरवाद नहीं है, एक ईश्वर उस रूप से नहीं भी मानते हैं, 24 तीर्थंकर कहेंगे, और बुद्ध ने तो ईश्वर का, ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हमेशा उनको ध्यान की अवस्था में दिखाया गया है। वे राजकुमार थे, और कैसे उनको बोध हुआ, उन्होंने उनको एनलाइटनमेंट मिली, तो किसका ध्यान किया होगा जिससे उनको एनलाइटनमेंट मिली, जो महावीर और बुद्ध ने से भी ऊंचे थे जिनसे उन्होंने शक्ति पाई और बोध हुआ, अब वो कौन? तो जब हम ये बातें सोचते हैं तब ख्याल आता है हमारे भारत में भी कोई कम नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग मठ भारत के चारों कोनों में है, कितने हर स्टेट में कुछ न कुछ है। तो जब हम ज्योतिर्लिंगम की पूजा करते हैं, ये ज्योतिर्लिंगम क्या है? लिंगम का अर्थ है चिन्ह, सिंबल, सिंबल ऑफ लाइट, ज्योति का सिंबल। और जितने भी नाम हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगम मठों के या जो शिव के मंदिर हैं, ये सब परमात्मा के गुण और कर्तव्यवाचक नाम है। मनुष्यों के नाम संज्ञावाचक है, इसलिए परमात्मा का नाम और रूप मनुष्यों के समान नहीं है, इसलिए नाम रूप से न्यारा कह दिया, पर गुण और कर्तव्यवाचक नाम जरूर है। विश्वनाथ है, वो सोमनाथ है, महाकालेश्वर है, पापकटेश्वर है, मुक्तेश्वर है। आज कई अपने ऊपर भी वो नाम रखवाते हैं, हालांकि माँ बाप ने रखे होंगे। एक भाई का नाम था विश्वनाथ भाई, पर एक भी मकान उनके नाम पर नहीं, विश्वनाथ क्या हुआ? तो देखिए, तो नाम तो कुछ भी रख दे पर वो तो संज्ञावाचक है। नाम किसी का होगा शांति और दिन भर लड़ती रहती होगी, वो भी होता है। इसलिए परमात्मा, क्योंकि उनका गुण और कर्तव्य वाचक नाम है, इसलिए वो दैहिक नामों से न्यारा है। तो वो कौन सा स्वरूप है जिसको सभी धर्मों की आत्माएं स्वीकार करती है और वो स्वयंभू हो, उसको किसी ने रचा न हो? अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, कुछ साल पहले अमरनाथ की यात्रा पर जब गए थे तो पता चला कि वो तो शिवलिंग जो नेचुरली बनता है बूंद बूंद गिरने से, वो गर्मी इतनी पड़ी थी कि वो बर्फ मेल्ट हो गई और पुजारियों ने अपने हाथ से वो शिवलिंग तैयार किया था, तो कितना विरोध हुआ था, क्योंकि शिव तो स्वयंभू है, उसको किसी ने बनाया नहीं। जितने भी ज्योतिर्लिंगम मठ दिखाते ना, शिवलिंग दिखाते हैं अलग अलग जो ये ज्योतिर्लिंगम मठों के, वो कहते सब स्वयंभू है, ये प्रकट हुए, इनको बनाया नहीं गया किसी ने। तो इसीलिए परमात्मा का कोई रचयिता नहीं है, वो तो सदा था, है और रहेगा। अमरनाथ का भले किसी का नाम अमरनाथ हो, पर एक दिन कहेंगे अमरनाथ की भी अंतिम यात्रा निकली है, अमरनाथ नाम क्या हुआ? तो परमात्मा हम किसे कहेंगे? पशुपति नाथ कहते हैं, पशु समान जो हमारी इस समय बुद्धि हो गई उनको भी इतना श्रेष्ठ बनाने वाला वो पशुपति नाथ है। सोमनाथ है, सोमरस, ज्ञान का सोमरस पिलाकर हमारे अंग अंग को शीतल करने वाला वो सोमनाथ है। राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की, इतने हीरे जवाहरात उसमें जड़े, क्योंकि भगवान ने इतना धन भारत में दिया था, जो मोहम्मद गजनवी ने 17 बार ऊंट भर भर के इतना हीरे जवाहरात उस मंदिर से लूट के ले गया। तो हम देखते हैं कि आखिर वो परमात्मा है कौन? रामेश्वर, गोपेश्वर, यहाँ तक कि दिखाते कि भी श्री कृष्ण ने, श्री राम ने भी परमात्मा शिव से शक्ति ली। श्री कृष्ण ने शिव से शक्ति ली असुरों का नाश करने लिए, राम ने शिव से शक्ति ली रावण का नाश करने के लिए, पर परमात्मा को किसी से शक्ति लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। अब इसी प्रकार हम शक्तियों को देखेंगे, शिव शक्ति कहते हैं, तो शक्तियों के भी ऊपर कौन है? वो शिव है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है। तो जब हम निराकार ज्योति स्वरूप कहते हैं तो कई कहते नहीं, उसका भी तो आकार है, शंकर दिखाते हैं। अब यहाँ हम फिर प्रश्न करते हैं, शंकर को भी सदा ध्यान की अवस्था में दिखाया गया है, तो शंकर किसका ध्यान कर रहा है? कभी ये सोचा? जरूर अपने से ऊंचे का ही ध्यान करता होगा। शंकर को तो विनाशकारी कहते हैं और शिव को तो कल्याणकारी कहते हैं, तो परमात्मा हम किसको कहेंगे? परमात्मा हम उसे ही कहेंगे जिसको सर्व धर्मों की आत्माएं याद करती है, यहाँ तक कि देवी देवताओं ने भी उनको याद कर शक्ति प्राप्त कर देव पद को प्राप्त किया, उसको हम परमात्मा कहेंगे। तो आज हम भारत में कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, किस हैसियत से भाई भाई कहते हैं? इसलिए नहीं कि भारत धर्म निरपेक्ष देश है और सभी धर्मों को समान मान्यता है इसीलिए भाई भाई, पर इसलिए भाई भाई है क्योंकि पिता एक है। तो बहुत सुंदर किसी ने ये प्रेजेंटेशन भेजा था, मस्जिद चर्च मंदिर में 6 अक्षर और कुरान बाइबल गीता में 5 अक्षर, तो एक माइनस करो 6 से 5 तो एक, ईश्वर एक, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे क्रिश्चियंस का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे किसी का भी हो। आज अगर मोहम्मद गजनवी को ये मालूम होता कि जिस सोमनाथ मंदिर को मैं लूट रहा हूँ वो मेरी अल्लाह का ही यादगार है, तो कभी वो लूटता? सोचने की बात है, ये हिंदुओं का भगवान है। ये कहा, मंदिरों को मस्जिद बना दिया, कितना आज भी वो अयोध्या के ऊपर इतना झगड़ा चल रहा है, लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि एक पिता परमात्मा को भूल गए हैं। तो वास्तव में योग वो शक्ति है जिससे सभी धर्मों को एक बनाया जा सकता है, और उस एक को एक बनाकर हम अपने भारत में फिर से सुख शांति ला सकते हैं, एक को याद करके। अब वो एक को हम कैसे पहचाने, उसको हम कैसे जाने? क्योंकि जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, परमात्मा एक है और ये सारा संसार ईश्वर का परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ये कुटुंब है एक का, तो आपस में हम सभी आत्माएं भाई भाई है, तो आत्मा के नाते भाई भाई है। अब उस भाई भाई को हम पहचानें, वन गॉड रिमेम्बर्ड एज लाइट। सन्यासी भी जब ब्रह्म तत्व कहते हैं, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि आदि कुछ कहते हैं, शिवो हम कहते हैं, वास्तव में उस प्रकाश को याद करते हैं, उस लाइट को याद करते हैं, जो 5 तत्वों से पार एक छठा महतत्व है, वो भी एक लाइट का तत्व है। तो लाइट ज्योति जिसको हम मंदिरों में दिए के रूप में प्रज्वलित करते हैं या मोमबत्ती के रूप में प्रज्वलित करते हैं, अब मुसलमान लोग मस्जिदों में कोई भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, वो निराकार कहते हैं, यानी कोई आकार नहीं है। अब निराकार शब्द को भी हमें समझना होगा, निराकार का मतलब ये नहीं है कि कोई स्वरूप ही नहीं है, निराकार का मतलब है कोई प्राकृतिक स्वरूप नहीं है, प्रकृति के स्वरूप में आकार है और वो लेंथ देंगे, ब्रेथ देंगे, हाइट देंगे और विड्थ देंगे, ये सब देंगे, मेजरमेंट करेंगे, लेकिन 2 ऐसे शब्द हैं ज्योमेट्री के अंदर जिनको कोई मेजरमेंट नहीं है, और वो कौन से 2 शब्द है? वन इज पॉइंट, अ पॉइंट हैज नो मेजरमेंट्स एंड येट इट इज वेरी मच इन एग्जिस्टेंस ऑन द ग्राफ, विदाउट अ पॉइंट यू कैन ड्रॉ ग्राफ। तो एक तरफ है पॉइंट, नो मेजरमेंट्स एंड येट इट एग्जिस्ट। सेकेंडली इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हैज नो मेजरमेंट एंड येट इट एग्जिस्ट बिकॉज 2 parallel lines विल मीट एट इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी एंड पॉइंट बोथ एग्जिस्ट एंड येट नो मेजरमेंट। अब ये भी कौन सा स्वरूप है, हम उसको पहचानेंगे। तो इसीलिए निराकार शब्द कहा, यानी कोई मेजरमेंट उसमें नहीं है पर स्वरूप जरूर है। फिर उसको निर्गुण भी कहा, भारत में हम कहते निराकार, निरंजन, निर्गुण, निराकार, तो ये निर्गुण शब्द का भी अर्थ है। निर्गुण डज नॉट मीन कि कोई गुण नहीं, कई निर्गुण उस अर्थ से लेते हैं कि कोई गुण नहीं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, आप ही तरस परो, ऐसे भी कहते हैं, हे भगवान मैं निर्गुण हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं है, तुम मुझ पर तरस खाओ। और ईश्वर को भी निर्गुण कहते हैं, क्या एक ही अर्थ है, अर्थ अलग है। निर्गुण क्यों कहते हैं परमात्मा को, क्योंकि जो प्रकृति के गुण हैं, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, साइंस में हमने पढ़ा, एक एक जो भी नंबर्स दिए गए पीरियोडिक टेबल में, वो सब अलग 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 है, अलग अलग गुणों से भरे हुए हैं, है कि नहीं। इसलिए ये प्रकृति के गुण हैं, परंतु जब निर्गुण कहा, माना प्रकृति के कोई भी गुण ईश्वर के गुण नहीं है, इसलिए उनको त्रिगुणातीत कहा। त्रिगुण जब अगर सारे भी जो भी जितने भी प्रकृति के गुण हैं, इनको अगर तीन गुणों में बांटा जाए, प्रकृति विचरण करती है तीन गुणों में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतो, रजो, तमो जिनसे प्रकृति गुजरती है, परमात्मा इन तीनों गुणों में नहीं आता, सतो रजो तमो से परे है, इसलिए उनको त्रिगुणातीत, या त्रिगुणातीत कहो या निर्गुण कहो, सेम थिंग। और निरंजन, निरंजन का मतलब है इस संसार में जो रिलेटिविटी है उनसे परे, जन्म और मरण, कर्म फल, पाप पुण्य, सुख दुख, इन सब से वो परे, इसलिए उनको निरंजन का, निरंजन, निराकार, निर्गुण, मीन्स प्रकृति की जो बातें हैं उनसे वो न्यारा है। इसीलिए मुस्लिम भाई बहन भाई हमारे कैसे मस्जिद में जाते, देयर इज नथिंग देयर, परंतु वो उसी निराकार को मानते हैं। और फिर हम देखें कि क्रिश्चियनिटी के अंदर भी गॉड इज लाइट, लीड मी दाई काइंडली लाइट, यही कहा। सिख धर्म में भी उसी लाइट को याद किया, इसलिए ग्रंथ को कितना महत्व दिया जाता है, क्योंकि ग्रंथ उसी ज्योति स्वरूप की सारी महिमा है, किसी देहधारी की महिमा है ही नहीं वो। और हम भी उसी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करते हैं, और उसी को ही हम शिव कहते हैं। जब हम शिव कहते हैं, हमारा अभिप्राय उस निराकार ज्योति स्वरूप से है, जो रूप में बिंदु है पर गुणों में सिंधु है, एन ओशन इन अ डॉट, इन्फिनिटी, इन्फिनिट क्वालिटीज इन एन इन्फिनिटेसिमल डॉट, बिकॉज दैट इज एन एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी। लेकिन शिव क्यों कहा, क्योंकि शिव शब्द में के जितने भी अर्थ हैं वो सब परमात्मा से लगते हैं। शिव माना शांति, शिव माना पवित्रता, शिव माना कल्याण, शिव माना सत्य, शिव माना सुंदर, शिव के अनेक अर्थ हैं और वो सब परमात्मा से लगते हैं। तो इसलिए परमात्मा को पहचानने के बाद, उनके स्वरूप को समझने के बाद, अब वो कहाँ है। जब हम कहते हैं परमात्मा त्रिलोकी नाथ है, ऊपर वाला है, हम किसको कहते हैं ऊपर वाला। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, वो किसके लिए कहते हैं, वो कहाँ का रहवासी है, अवश्य इस दुनिया का तो नहीं है। इसलिए वो कौन से तीन लोक हैं जिन्हें हमें पहचानना होगा। तो कई लोग समझते हैं कि ये भूलोक है, स्वर्ग लोक है, फिर नीचे नरक लोक है, या आकाश लोक है, पाताल लोक है, पृथ्वी लोक है। लेकिन परमात्मा ने तीन लोकों का भी परिचय दिया, अपना परिचय तो दिया ही है लेकिन अपने धाम का भी परिचय दिया है कि ये साकार लोक है जो पंच तत्वों के अंदर है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी जिनसे ये शरीर बनता है, ये सब पंच तत्व है। सारा यूनिवर्स सूर्य चांद सितारे ये सब एक ही पांच तत्वों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पांच तत्वों से पार भी एक तत्व है जो प्रकाश का तत्व है जिसको अखंड ज्योति का महतत्व कहा जाता है। ये पांच तत्वों से परे हम आत्माएं वास्तव में वहीं से आती है। तो जब हम कहते हैं भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है, तो भगवान का घर भी वही है जो पिता का घर है, वही बच्चों का भी घर है, एक ही घर के हैं हम। तो एक ही घर के वासी हम आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतान उसी धाम से इस संसार में आती है जिसको परम धाम शांति धाम मुक्ति धाम निर्वाण धाम परलोक आदि आदि नामों से याद हम करते हैं। पार निर्वाण गया बुद्ध के लिए कहते वो कहाँ है पार निर्वाण, मोक्ष चाहते हैं मुक्ति चाहते हैं, अवश्य आत्मा का कोई वो धाम होगा। इसलिए आत्मा को पंछी कहा गया, परदेसी कहा गया, क्योंकि आत्मा का सच्चा धाम तो वो परम धाम है। अब जब उस धाम को हम पहचानने लगते हैं, अब उसी धाम में मन को ले जाना है। वो अखंड ज्योति का महतत्व है जिसका साक्षात्कार अनेकों ने किया है और पिता श्री ब्रह्मा बाबा जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापक हैं, उनको कैसे ये सब साक्षात्कार हुए और शिव परमात्मा ने उनके माध्यम से अपना परिचय हमें दिया। कई लोग जब पिताश्री ब्रह्मा बाबा का फोटो देखते हैं, कई जगह यहाँ देखते हैं, तो समझते शायद ये हमारे गुरु हैं या हम इनको भगवान कहते हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं है, ना हम इनको भगवान कहते हैं ना ये हमारे गुरु है, ये हमारे अलौकिक पिता है। अलौकिक यानी लौकिक तो हर एक अपना अपना है ही है, परंतु इस अलौकिक पिता के द्वारा परम पारलौकिक पिता परमात्मा ने अपनी पहचान दी है और इनको ये सब साक्षात्कार हुए हैं। वो पूरा इतिहास है जो शायद मैं आपको परसों सुनाऊंगी, शायद आपका एक सब्जेक्ट है उसमें मैं ये बात आपको सुनाऊंगी। तो परमात्मा जिसको हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, अब उसको हमें पहचानना है। और वो इस सृष्टि पर आते हैं, ऐसे नहीं कि सदा वही है, आते हैं, लेकिन कब आते हैं? उनका यादगार भी है शिवरात्रि, हम मनाते हैं फाल्गुन महीने के 14 पर अमावस्या से एक दिन पहले, जब घोर अंधियारी रात होती है, एक दिन उससे पहले परमात्मा का सृष्टि पर अवतरण होता है और अभी वही समय चल रहा है जबकि यह सृष्टि ऑक्सीजन पर जिंदा है। क्यों? अपना श्वास खत्म हो चुका है उनका, बोरोड ब्रेथ पर चल रही है, आकाश से बम्स बरस रहे हैं और धरती पर विकारों की अग्नि जल रही है। तो नीचे भी अग्नि ऊपर भी अग्नि, आप सोच सकते हैं इस दुनिया का हाल क्या हो रहा है। इसी को ही हम कहते हैं धर्म ग्लानी का समय, जबकि भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। मैं आकर के अधर्म का नाश करता हूँ और सत धर्म की स्थापना करता हूँ। परमात्मा के तीन कार्य गाये हुए हैं, ये कर्तव्य उनके, इसलिए जीओडी कह दिया, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, लेकिन ये इनकी तीन रचना है, स्वयं रचयिता। इसलिए शिव के ऊपर त्रिपुंड दिखाते हैं, तीन लकीरें दिखाते हैं, ये तीन लकीर ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूचक है। तो परमात्मा कैसे इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, विनाश नहीं होता है, टोटल एनहाइलेशन, सब कुछ नष्ट हो जाए, प्रलय हो जाए, ऐसे नहीं होता, लेकिन एक परिवर्तन होता है, रात के बाद दिन जरूर आता है, यही परमात्मा हमें कहते हैं। तो जब हम शिव कहते हैं, हमारा अभिप्राय उस ज्योति से है, जिसकी मंदिर जगह जगह भारत में चारों ओर है, और हम उसको बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो बाबा माना पिता, तो वो शिव पिता परमात्मा जो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है, सागर है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। कहा जाता सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, और साक्षात सरस्वती विद्या की देवी ईश्वर की स्तुति लिखने बैठे तो भी पूरी न हो, वो किसकी महिमा है, एक ही निराकार ज्योति स्वरूप की महिमा। और कैसे वो परम धाम के वासी इस सृष्टि पर आते हैं, और अभी वो अपना कार्य कर रहे हैं, बड़े गुप्त रीति से विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, जिसको आप अगले सत्रों में और आगे देखेंगे, सुनेंगे। तो अब उस पिता को हमें याद करना है, इसी को ही हम राजयोग कहते हैं। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए हम ये अभ्यास करेंगे। ये लाल प्रकाश जो जलाया जाता है यहाँ, इसके पीछे एक राज है। वैसे जब ट्रैफिक लाइट्स होती है तो लाल सिग्नल आते ही हम गाड़ी को ब्रेक लगा देते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं, वहीं स्टॉप हो जाता है, और फिर इंतजार करते हैं कि जब पीली हो फिर हरी हो तो हम जाएं। तो ये सिग्नल हमें मिलता है कि संसार के विचारों को आप स्टॉप कीजिए, और दूसरा सिग्नल है कि ये सुनहरा लाल प्रकाश वातावरण में बनाते हैं ताकि उस परम धाम की हमें याद आए कि वो पिता परमात्मा उस परम धाम का वासी है और मैं आत्मा भी उसी धाम की वासी हूँ। तो मन का शुद्धिकरण भी हो जाता है, आत्मचिंतन भी हो जाता है, परमात्मा चिंतन भी हो जाता है, और धीरे धीरे मन में वो शांति की शक्ति अनुभव होने लगती है। तो चलिए थोड़ा सीधा बैठेंगे, सीधा बैठें और आंखें अगर खुली रख सको तो बहुत अच्छा, क्योंकि इस हॉल्स के अंदर वाइब्रेशंस बहुत ऊंचे हैं, और सामने वाले से भी आप वाइब्रेशंस ले सकते हैं कि परमात्मा की याद में हम हैं और उनकी ही स्मृति में हम आत्मा समझकर अपने धाम में विराजमान हैं। एक पिता परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ रहे हैं, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है। अंतर में खुशी लाए, खुशी किस बात की? खुशी कि जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था, अब उसकी मुझे पहचान मिल गई। जिस पिता परमात्मा को मैं इतना याद कर रहा था, अब उसको पहचान लिया है। उसके साथ ही मेरे सर्व संबंध है। और जितनी उसकी अंदर में खुशी होगी, उतना ही फिर नशा भी रहेगा कि मैं उसकी संतान हूं, आज कोई बड़े व्यक्ति का बेटा हो उसको कितना नशा होता है कि मैं किसका बेटा हूँ, मेरा पिता कौन है। तो आत्मा को भी ये ईश्वरीय नशा चढ़े कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है, दाता है, जो सदा शिव है, कल्याणकारी है, सत्य है, अविनाशी है, जिसके साथ मुझ आत्मा के सर्व संबंध हैं, मेरे मात पिता, बंधु और सखा, स्वामी और सतगुरु, सब वही है। उनके साथ मुझ आत्मा का अविनाशी रिश्ता है। जो शांति का सागर है, और मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति मुझ आत्मा का निज स्वभाव है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति धाम मुझ आत्मा का निज धाम है। इस सृष्टि मंच पर मैं आत्मा तो मेहमान हूँ, एक एक्टर हूँ, ये शरीर रूपी वस्त्र धारण कर मैं पाठ बजा रही हूँ।